नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषक मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ईश्वर चंद्रा। किसान भाइयों, आज हम बोरो धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताने जा रहे हैं और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर नीलंजय जी, जो कि कन्या वैज्ञानिक धान के लिए हैं राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में। नीलंजय जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप किसान भाइयों को बोरो धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से समझाएं।
अब बिहार के सारे किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बोरो एक विशेष प्रकार के धान का मौसम है जिसकी बुआई जाड़ा के पहले यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसकी रोपनी जाड़ा के बाद यानी कि जनवरी फरवरी में तथा इसकी कटाई गर्मी यानी कि अप्रैल मई के महीने में होती है। इसकी खेती उस क्षेत्र के लिए विशेष उपयुक्त है जहां जल जमाव के चलते गेहूं की फसल समय पर नहीं ली जा सकती। सदियों से बोरो धान की खेती नदियों के किनारे होती आई है जिसमें लंबे कम उपज देने वाली प्रजातियां लगती थीं, परंतु धान के बौने प्रभेदों के आगमन के बाद पश्चिम बंगाल में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा और वहाँ बोरो क्रांति हुई। बोरो की खेती निचली जमीन में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की जमीन जहाँ सिंचाई की सुविधा थी वहाँ होने लगी। इसके फलस्वरूप बिहार में इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा आदि जिलों में बड़े पैमाने पर होने लगा। बोरो धान की जलवायु अनुकूल होने की वजह से आघात या मध्यम अवधि वाले उन्नत प्रभेद काफ़ी लोकप्रिय हुए। बिहार में 6 से 7 लाख हेक्टेयर जमीन चौर के अंतर्गत आती है जिसमें न खरीफ धान की अच्छी फसल और न ही गेहूं की खेती हो पाती है। ऐसे क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, चंपारण आदि जिले में हैं। विशेषकर कोसी प्रमंडल बोरो के लिए परंपरागत क्षेत्र है, अतः इसका विस्तार गैर परंपरागत क्षेत्रों में करने के लिए शीत अवरोधी प्रभेदों की आवश्यकता की जरूरत पड़ी। बोरो धान कहाँ कहाँ संभव है इसकी जानकारी किसान भाइयों को देना सबसे पहले मैं उचित समझता हूँ। तो किसान भाई, बोरो धान की खेती पर मुख्य रूप से जमीन में पानी की ऊंची सतह, जलवायु में आर्द्रता एवं जाड़ा में अनुकूल तापमान का प्रभाव पड़ता है। कोशी प्रमंडल में अनुकूलता के चलते बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ मेरे अनुकूलता कहने का ये मतलब है कि कोशी प्रमंडल में जो तापमान होता है वो उतना नहीं गिरता है जितना कि उत्तर बिहार के बाकी जिलों में। गैर परंपरागत क्षेत्र जिसमें बोरो धान की खेती नहीं होती है, हालांकि जल जमाव भी रहता है, वहाँ मुख्य रूप से जाड़ा में निम्न तापक्रम के चलते बोरो धान की खेती नहीं हो पाती। इसके अलावा इन क्षेत्रों में गर्मी में अधिक तापमान के चलते फसल में दाने ठीक से नहीं बन पाते हैं, अतः यह बहुत ज़रूरी है कि बोरो मौसम के लिए जो भी धान की किस्म तैयार की जाए उसमें सबसे पहले तो निम्न तापमान के प्रति अवरोधी क्षमता हो तथा उसके मैच्योरिटी के समय अधिक तापमान को सहने की क्षमता हो। इसीलिए गैर परंपरागत क्षेत्रों में बोरो धान के प्रसार के लिए शीत अवरोधी प्रभेद जो अधिक तापमान रहने पर भी दाने बना सके आवश्यक है। अब मैं किसान भाइयों को शीत अवरोधी किस्मों के विकास के बारे में बताना चाहूँगा। बोरो धान की असीम संभावना को देखते हुए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार पूसा में गहन शोध के बाद अनेक प्रभेदों का विकास किया गया है। पूसा केंद्र पर निम्न तापमान का प्रकोप अधिक होता है, यहाँ तक कि जो प्रभेद कोशी क्षेत्र में प्रचलित हैं यहाँ पर जाड़ा के चलते मर जाते हैं। शीत अवरोधी प्रभेद का विकास करने के लिए यह केंद्र सर्वोत्तम है। अनेक वर्षों के शोध के पश्चात यहाँ से विकसित तथा बाहर से विकसित प्रजातियों को मिलाकर कई वर्षों तक उपज परीक्षण किया गया। बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर कोसी प्रमंडल से अलग यानी गैर परंपरागत मधुबनी जिला के झंझारपुर ब्लॉक के चौर क्षेत्रों में भी किया गया। विश्वविद्यालय ने अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इसकी खेती पहली बार लगभग 400 एकड़ में वर्ष 1995-96 में जल जमाव वाले चौर क्षेत्र जैसे कि प्रतापपुर, कश्याम, दलियारा, निर्मली, मधेपुर आदि में की। यहाँ कोई भी खरीफ फसल नहीं के बराबर हुआ करती थी। गौतम की फसल इस क्षेत्र में बहुत उम्दा हुई। इसकी खेती के फलस्वरूप किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गरीब किसानों को भी खाने के लिए चावल उपलब्ध हुआ। बोरो धान की सफलता इस क्षेत्र के लिए उदाहरण है और यहाँ से बिहार में बोरो क्रांति शुरू हुई। अब यहाँ के किसान बोरो धान की खेती में महारत हासिल कर लिए हैं। यहाँ तक कि बिचड़ा यहाँ पर किसान डपोक विधि से भी उगा सकते हैं। बोरो के लिए काफ़ी सारे नए प्रभेदों का विकास विश्वविद्यालय स्तर से किया गया है। कुछ प्रभेद जो कि बहुत ही अच्छा करते हैं बोरो मौसम में, उनके नाम हैं रिचारिया, धनलक्ष्मी, प्रभात एवं सरोज। इसमें रिचारिया एक बौनी किस्म की 100 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है। इसके दाने लंबे एवं पतले होते हैं। यह बोरो मौसम के लिए अनुशंसित किस्म है और इसकी उपज क्षमता बोरो में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि खरीफ में इसकी उपज क्षमता 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वहीं पर धनलक्ष्मी एक बौनी किस्म की 105 दिनों में पकने वाली किस्म है। इसके दाने लंबे एवं महीन होते हैं। इसमें रोग अवरोधी क्षमता रिचारिया से अधिक है। जस्ते की कमी वाले क्षेत्र के लिए यह खासकर उपयुक्त है। इसकी उपज क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रभात जो कि एक और बौनी किस्म है जो 105 दिनों में तैयार होती है, यह खासकर धान तंबाकू वाले क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय है। इसके दाने लंबे एवं पतले होते हैं तथा उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अतः विश्वविद्यालय के स्तर से बोरो के मौसम में धान की किस्म उगाई जाने वाली बहुत सारी किस्में हैं और ये प्रयास निरंतर जारी है। अब मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि धान बोरो में धान की खेती किस तरह से किया जाए। तो किसान भाइयों, बोरो के मौसम में धान की खेती के लिए बीज गिराने का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मध्य नवंबर तक उचित माना जाता है। बोरो धान की खेती में खरीफ की तुलना में अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बिचड़े ठंड से मर जाते हैं। अतः एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 50 से 60 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ सकती है। बीज जनित रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम बेविस्टिन या थीरैम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बोरो मौसम में बीज स्थली का चयन एवं इसकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो किसान भाइयों, नीची ज़मीन जहाँ पानी का टिकाव होता है और मिट्टी भारी है, बोरो धान के बीज स्थली के लिए उपयुक्त माना जाता है। खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम SSP एवं 1 किलोग्राम MOP डालकर कदवा करें। अंकुरित बीज को समान रूप से बीज स्थली में छींटें। समतल बीज स्थली उत्तम माना जाता है। बीज स्थली में बिचड़े पूरे जाड़े भर रहेंगे, तापक्रम कम होने पर बिचड़ों में वृद्धि नहीं होगी और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में पानी हमेशा बना रहना चाहिए तथा उसे रात में पॉलीथीन से ढका जाए तो बेहतर रहेगा। बिचड़ा उगाने की सामान्य विधि अपनानी चाहिए। बीज को पहले रात भर पानी में डुबो कर रखने के बाद उसे नमी वाले बोरों में एक या दो दिन छोड़ दें। बीज अंकुरित हो जाने पर उसे कटवा किए गए खेत में नर्सरी के लिए छींट दें। गैर परंपरागत क्षेत्रों में जहां किसान भाइयों ने बोरो धान की खेती में महारत हासिल कर लिया है, वो बिचड़ा उगाने के लिए डपोक विधि का भी उपयोग करते हैं। इस विधि द्वारा बिचड़े कहीं भी उगाए जा सकते हैं, या तो किसी फर्श पर या फिर पॉलीथीन पर बीज रख के पानी में भिगोकर और उसको लगभग एक इंच बीज की मोटी परत बनाकर फैला दें। बीज के अंकुरण के बाद हल्का सा उसे दबा दें। 3-4 दिन सुबह में पानी का हल्का हल्का फुहारा देते रहें। धीरे धीरे अंकुरित बीज हरा पौधा बन जाएगा। जाड़ा भर यह नर्सरी का पौधा वहीं पर स्थित रहेगा और समय आने पर जब तापमान में थोड़ी वृद्धि हो जाए तो इसकी रोपाई कर दें। इन बिचड़ों पर जाड़ा का असर कम होता है क्योंकि इन्हें किसी कमरे के भीतर या किसी ढके हुए स्थान पर उगाया जाता है। अब बोरों के मौसम में धान के बिचड़ों की देखभाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, तो किसान भाइयों को बिचड़ों की देखभाल की भी जानकारी होनी चाहिए। बोरों धान के बिचड़ों को ठंड से बचाने के लिए प्रतिदिन सुबह ओस को नर्सरी से हटा देना चाहिए। तो इसके लिए जो धान के बिचड़े हैं उनको एक छड़ी से या एक रस्सी से धान के बिचड़ों के ऊपर से गुजार देना चाहिए, जिससे कि बिचड़ों के ऊपर जो ओस है वो बिल्कुल हट जाए। दूसरा उपाय है कि नर्सरी में राख का भुड़काव सप्ताह में एक बार जरूर कर देना चाहिए। ज़्यादा ठंड गिरने पर नर्सरी को प्लास्टिक से पॉली टनल बनाकर रात में ढक देना चाहिए। पॉली टनल हम लोग उस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि पॉलीथीन को बांस के सहारे धान के बिचड़ों के ऊपर बनाकर और उन बिचड़ों को ढक दिया जाता है, जिससे कि बाहर के तापमान और उस पॉली टनल के भीतर के तापमान में एक खास तरह का फ़र्क हो जाता है और बिचड़ों को बचाने में सुविधा मिलती है। ये पॉली टनल की तकनीक हमारे ही विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई है। आज से 4-5 साल पहले NATP के अंतर्गत बोरो धान में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस पॉली टनल को बनाकर और धान के बिचड़ों को बचाने का उपाय बताया था। और सबसे बड़ी बात कि अंततः जाड़े के दिनों में नर्सरी में पानी देना किसान भाई कभी न भूलें। अब रोपनी का समय एवं विधि भी बहुत जरूरी हो जाता है। किसान भाई रोपनी का समय मौसम के तापक्रम पर चुन सकते हैं। 15 जनवरी के बाद इसकी रोपाई किसी भी समय की जा सकती है और की जानी चाहिए भी। बोरो धान के केस में धान की रोपनी घनी करनी चाहिए। एक स्थान पर 1 से 2 बिचड़े रोपें। पौधे से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर किसान भाइयों को रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि रोपनी के बाद कहीं के पौधे मर गए तो फिर उस स्थान पर पुनः रोपनी कर देनी चाहिए। छिछली रोपनी करने से कलों की संख्या में वृद्धि होती है। पानी की परत बनाए रखें तथा घास पात कभी न जमने दें। बोरों के मौसम में किसान भाइयों को उर्वरक के प्रयोग की भी जानकारी होनी चाहिए। तो बोरो धान के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन के लिए करीब 300 किलोग्राम यूरिया, 40 किलो स्फुर के लिए करीब 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 20 किलोग्राम पोटाश के लिए 80 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश अनुशंसित है। कदवा करते समय आधा नेत्रजन एवं अन्य सभी उर्वरक डाल दें। बचा हुआ नेत्रजन उपनिवेशन रोपनी के 25 से 30 दिनों बाद एवं गाभा लगने के पहले आधा आधा डाल दें। अब इस बोरो मौसम में धान में रोग व्याधि के प्रकोप के बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी देना आवश्यक है। तो साधारणतः इस मौसम में रोग व्याधि का प्रकोप धान में कम होता है, लेकिन गंधी कीट का प्रकोप होता है। यह गंधी कीट दूध की अवस्था में दाना के अंदर से दूध को चूस लेता है एवं दाना को खखड़ा कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए 20 से 25 किलोग्राम फॉलिडोल पाउडर का भुड़काव सुबह के समय बाली पर ओस रहते किया जा सकता है। यदि वर्षा की संभावना हो तो कभी भी भुड़काव न करें। बीमारी के रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। और अंत में बोरो धान के कटनी एवं भंडारण के विषय में किसान भाइयों को कुछ बात बताना चाहूँगा कि फसल के पक जाने के बाद कटाई समय से कर लेनी चाहिए। वर्षा के मौसम में कटनी करते समय इसकी दौनी एवं ओसौनी के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दाना को साफ कर धूप में सुखा कर 10% नमी के स्तर पर भंडारण करनी चाहिए। यदि वर्षा लगातार हो रही हो तो इसकी दौनी कर दाना को चूड़ा मिल पर बेच दें ताकि किसान को नगदी आमदनी हो जाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को अंत में देना चाहूँगा कि आखिर बोरो धान की किस्मों की उपज खरीफ मौसम से ज़्यादा क्यों होती है। वही किस्म खरीफ में, जैसे रिचार या धनलक्ष्मी के बारे में अभी मैंने बताया, वो किस्में खरीफ में कम उपज देती हैं और बोरो के मौसम में वो ज़्यादा उपज देती हैं। इसका कारण ये है कि इस मौसम में सूर्य की अधिक किरण, रात्रि में कम तापमान, अच्छा जल प्रबंधन एवं भरपूर उर्वरक का उपयोग करने से प्रभेदों की क्षमता के अनुसार अधिक उपज होती है। ऐसा खरीफ मौसम में संभव नहीं है। बोरो धान का तैयार होने का समय प्रभेदों की अवधि के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए प्रभेदों का चयन पानी की उपलब्धता के आधार पर करनी चाहिए। जहाँ जल्दी फसल लेनी हो तो रिचारिया, प्रभात एवं धनलक्ष्मी लेनी चाहिए।
किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे बोरो धान के बारे में। बोरो धान के बारे में आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। आज का समय ख़त्म हो गया है। नमस्कार।